स्थापत्य कला के साथ साथ तक्षण कला स्कल्पचर के क्षेत्र में चोल कलाकारों ने सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। प्रारंभिक मूर्तियां पल्लव शैली से प्रभावित किंतु 10वीं सदी से इनकी विशिष्टता दिखाई देती है। आकृतियों इतने उभार के साथ बनाई गई हैं कि ये दीवार के सहारे सजीव खड़ी प्रतीत होती हैं। इनके अंग प्रत्यंग को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ गढ़ा गया है। कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियों में देवी देवताओं की मूर्तियां ही अधिक हैं, यद्यपि छिटपुट रूप में मानव मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। चूंकि चोल वंश के अधिकांश शासक उत्साही शैव थे, अतः इस काल में शैव मूर्तियों का निर्माण ही अधिक हुआ है। पाषाण मूर्तियों में भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसमें देवताओं, संतों तथा भक्तों, राजाओं की मूर्तियां बनाई गई। सर्वाधिक मूर्तियां नटराज शिव की हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं। ये आज भी दक्षिण के कई स्थानों पर विद्यमान हैं, जिनकी पूजा होती है। त्रिचनापल्ली के तिरुभरंकुलम से नटराज की एक विशाल कांस्य प्रतिमा मिली है, जो इस समय दिल्ली संग्रहालय में है। इसी जिले के तिरुवल्लनकडू से शिव की अर्धनारीश्वर रूप में एक मूर्ति मिली है, जो मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें नारी तथा पुरुष की शारीरिक विशेषताओं को उभारने में कलाकार को विशेष सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, भूदेवी, राम, सीता, कलिना नाग पर नृत्य करते हुए बालक तथा कुछ शैव संतों की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं, जो कलात्मक दृष्टि से भव्य एवं सुंदर हैं। चोल कलाकारों ने धातु मूर्तियों के निर्माण में एक विशिष्ट विद्या का प्रचलन किया है। चोल मूर्ति कला मुख्यतः वास्तु कला की सहायक थी, और यही कारण है कि बृहदीश्वर मंदिर की चौकी, भित्तिकाओं आदि पर शिव के और यही कारण है कि अधिकांश मूर्तियों का उपयोग मंदिरों को सजाने में किया गया। केवल धातु मूर्तियां ही स्वतंत्र रूप में निर्मित हुई हैं। दक्षिण मूर्ति, चंद्रशेखर, वृषभारूढ़, त्रिपुणांतक आदि की मूर्तियां उकेरी गई हैं। त्रिपुणांतक मूर्ति के माध्यम से शिल्पी राजराग के पराक्रम को उद्घटित करता हुआ जान पड़ता है। देवी तथा विष्णु के विविध रूपों की मूर्तियां भी यहाँ मिलती हैं। लौकिक मूर्तियां भी बनाई गई हैं। नृत्य की 108 मुद्राओं को नर्तकियों के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। गंगैकोंड चोलपुरम स्थित बृहदीश्वर मंदिर की मूर्तियां यद्यपि कम हैं, फिर भी अधिक कलात्मक एवं भावपूर्ण हैं। शिव की चंडे शानुग्रह मूर्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें भक्त चंडेश के ऊपर शिव कृपा के दृश्य को अत्यंत कुशलतापूर्वक गढ़ा गया है। दाराशुरम मंदिरों तो मूर्तियों की विशाल संग्रह ही है, जहां नाट्यशास्त्र की समस्त मुद्राओं का अंकन किया गया है। मंदिर की चौकी पर अंकित कुछ अलंकरण इतने लोकप्रिय बने कि उनका प्रभाव जावा के बोरोबुदूर मंदिर पर पड़ा। वास्तु तथा तक्षण के साथ साथ चोल काल की चित्रकला का भी विकास हुआ। इस युग में कलाकारों ने मंदिरों की दीवारों पर अनेक सुंदर चित्र बनाए हैं। अधिकांश चित्र बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। ये अत्यंत आकर्षक एवं कलापूर्ण हैं। चित्र प्रमुखतः पौराणिक धर्म से संबंधित हैं। यह शिव की विविध लीलाओं से संबंधित चित्रकारियां प्राप्त होती हैं। एक चित्र में राक्षस का वध करती हुई दुर्गा तथा दूसरे में राजराज को सपरिवार शिव की पूजा करते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार चोल राजाओं के शासन काल में राजनैतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से तमिल देश की महती उन्नति हुई है। वस्तुतः स्थानीय प्रशासन, कला, धर्म तथा साहित्य के क्षेत्र में इस समय तमिल देश जितना अधिक उत्कर्ष पर पहुंचा, उतना बाद के कालों में कभी नहीं पहुंचा। चेर राजवंश। मैं निशांत सिंह अब आपके सामने चेर राजवंश अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था, जिसके अंतर्गत श्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार का कुछ भाग सम्मिलित था। चोल राज के समान यह भी एक प्राचीन तमिल राज्य था। संगम युग के प्रथम चेर शासक उदयन जेरल लगभग 130 ईस्वी के थे। उनका पुत्र नेंदु जेरल आदन हुआ। उसने मालाबार तट पर अपनी नौसेना द्वारा किसी स्थानीय शत्रु की विजय की तथा अनेक यवन व्यापारियों को बंदी बना लिया। संगम तट पर अपनी नौसेना द्वारा, संगम साहित्य से पता चलता है कि उसने कई राजाओं को युद्ध में पराजित किया, अधिराज की पदवी प्राप्त कर ली। उसकी राजधानी का नाम मरंदई मिलता है। अपने समकालीन चोल शासक के साथ युद्ध में वह मारा गया। उसके छोटे भाई कटुटुवन ने कोंडू को जीता, पर चेर शक्ति का विस्तार पूर्वी समुद्र तक से पश्चिमी समुद्र तक कर लिया। इसके बाद आदन का प्रमुख शोंगु टवन राजा हुआ, जिसके मोहूर की विजय की। उसने अपने समकालीन पांड्य तथा चोल राजाओं को भी परास्त किया। संगम युग का अंतिम चेर शासक कुंड को इलजीराम इरुम पोरे 190 ईस्वी के लगभग हुआ। उसे भी चोल तथा पांड्य राजाओं को जीतने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद चेर राज्य का इतिहास अंधकारपूर्ण है। 12वीं सदी तक यह राज्य पल्लव, चोल तथा पांड्य राज्यों के अधीन रहा। 13वीं सदी के अंतिम चरणों में चेर वंश का शासक रविवर्मन कुलशेखर हुआ, जिससे पांड्य तथा चोल राज्यों ने अधिकांश भाग को विजित कर अपने राज्य का विस्तार किया। वह कुशल शासक तथा विद्या का संरक्षक था। कोल्लम क्विलम उसकी राजधानी थी।